ओम शांति। 4 दिसंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है। सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है। वशीकरण मंत्र का मतलब क्या होता है? वश करने वाला मंत्र। वशीकरण मंत्र, वश करने वाला मंत्र किसको वश करना है? हमें कर्म इंद्रियों का। हमने उनका राजा बनना है, हमने अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनना है, हमने कर्म इंद्रियों पर जीत पानी। वास्तव में ये जीत है माया पर जीत। कर्म इंद्रियों का राजा बनना माना माया पर जीत पाना, विकारों पर जीत पाना, अज्ञानता पर जीत पाना, रावण पर जीत पाना। चुप रहकर माम एकम याद करो। बैठकर क्या करना है? मन को बैठकर मनाना है एक बाबा की श्रीमत, तभी हम क्या कर पाएंगे? इस माया को अधीन कर पाएंगे। शिव बाबा की श्रीमत पर चलना, माम एकम याद करना, ये है महामंत्र। केवल एक बाप की श्रीमत पर चलना। अब हम माम एकम माम एकम माम एकम करेंगे तो कुछ होगा? तो माम एकम याद करो तो दुनिया वालों ने समझा कि हमने माम एकम करना है। ये मंत्र है, कुछ शब्दों का मंत्र बना दिया, कुछ अक्षरों का मंत्र बना दिया। अरे भाई, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। इससे समझना है कि हमने एक परमपिता परमात्मा की ही बात को मानना है। प्रश्न, शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है, सौदागर नहीं है?
भोला ग्राहक।
हाँ, आज ग्राहक बन गया। हाँ ना, ग्राहक बन गया आज।
हाँ,
सौदागर सौदा बेचने वाला, ग्राहक माना खरीदने वाला, क्या नहीं? प्रश्न है कि शिव बाबा ही सबसे बोला भोला ग्राहक है, कैसे? उत्तर, बाबा कहते बच्चे तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कचरा है वो मैं खरीदने के लिए आया हूं, बेच दो मेरे को, वो मैं लेता हूं। जैसे बाल खरीदने वाले आते हैं ना गलियों में, पुराने बाल बेच लो, ये बेच लो, वो बेच लो। हाँ, बहुत टाइम पहले से चल रहा है। हम जो छोटे थे तब भी बाल खरीदने वाले आते थे, सो भी तब जब तुम मरने पर हो, सो भी तब जब तुम मरने पर हो, तुम्हारे सफेद कपड़े भी मरने की ही निशानी। मैं लेने के लिए तब आया हूं तुम्हारा सौदा, तुम्हारा किचड़ा सब तन मन धन, जब तुम मरने वाले हो। वैसे ही मरने वाले हो, हाँ जी, हाँ। सो वो भी तब मैं तुमसे खरीदने आया हूं जब तुम मरने वाले हो। तुम्हारे सफेद कपड़े भी मरने की निशानी है कि तुमने कफन भी डाल रखा है, है नहीं? ये सफेद कपड़े भी इस बात की निशानी है कि ये मरने वाले हैं और तुम मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे से तुम्हारा बीमार तन, किसी भी काम में ना आने वाला धन, गंदा मन खरीदने के लिए आया।
कहीं ना बीमार तन ली
नहीं, आता है, आ गया है, कहते हैं जी तुम बीमार हो, गंदे हो, जो भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हारा खरीदने के लिए तैयार हूँ। तुम बेचने वाले बनो, मैं तुम्हारा भोला ग्राहक हूँ, देखो तुम्हारे से मैं गंदा लूंगा सारा कुछ और तुम्हें मैं अच्छा एवर हेल्दी तन स्वस्थ तन दे दूंगा और श्रेष्ठ मन दे दूंगा और 21 जन्म तक तुम्हारे पास धन की कमी नहीं आएगी।
दे
हम तो तैयार बैठे ले वे। हाँ जी नहीं लेने नहीं ढूंढा ढूंढा क्या आपको, भाग तो सकते नहीं तो भागे क्यों जब बेचे। हाँ वो कहते मैं आया ही लेने के लिए तब जब तुम मरने वाले हो एकदम। हाँ
तैयार है
हाँ हाँ, मतलब कहने का है कि हम तैयार हैं, बाकी कोई तैयार हो या ना हो, ठीक है ना। हाँ काल देखो क्या अभी देखो, ठीक है नहीं। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो, तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो, बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर दे। तुम बस अब मेरे ऊपर कुर्बान जाओ तो मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए माला माल कर देता हूं। ये है सौदा। तुम मेरे ऊपर कुर्बान जाओ, तुम मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए क्या कर दूंगा, माला माल कर दूंगा। मरने के लिए कोई ये भी नहीं कह रहे कि तुमने मेरे को तन दे दो मैं उठा के ले जाता हूं, तुम अपना धन मेरे को दे दो मैं ले जाता हूं, नहीं। तुम अपना तन मेरी श्रीमत पर यूज करो, अपना मन मेरी श्रीमत पर संकल्प करो, धन मेरे से पूछ के खर्च करो, बस इतनी तो बात की है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो नहीं की है। बाप पर बलि चढ़ो और तुम्हें 21 जन्मों के लिए स्वस्थ तन दे दूंगा, श्रेष्ठ मन दे दूंगा और ऐसा दान दे दूंगा जो 21 जन्म आपके पास खत्म होगा ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे क्या बना देते हैं, त्रिकालदर्शी बना देते हैं। क्योंकि अब हम जो ज्ञान को प्राप्त किया है वो ज्ञान देवताओं के पास नहीं, दुनिया के किसी धर्म पिता के पास में, तो कितना बड़ा महत्व है। तो इतना बड़ा धन ज्ञान धन और सृष्टि के आदि मध्य अंत का एक एक राज समझा दिया है और क्या चाहिए जो दुनिया में किसी के पास नहीं। गीत भोले नाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चे भोलानाथ के सम्मुख बैठे हुए हैं, व्यापारी लोग कहते हैं ऐसा कोई मत का मूरा, सिंधी भाषा है मत का मूरा, हिंदी में कहेंगे कम बुद्धि वाला, जिसकी दिमाग ना हो, मोटी बुद्धि वाला, आवे गांठ का पूरा, गांठ का पूरा मत का मूरा, गांठ का पूरा समझ गए, जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, ऐसा कोई ग्राहक आवे बस माला माल हो जाएंगे। जो 2000-2000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए, हे भगवान, ग्राहक जो दुकानदार होते हैं ना वो ऐसा बोलते हैं, हमको ऐसा ग्राहक मिला, पूजा पाठ करते हैं, मतलब ऐसा ग्राहक मिलाओ जो आवे बस माला माल कर जाए। अब भोलानाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाए, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल सकता है, मेरे जैसा ग्राहक शिव बाबा कहते कोई मिल सकता है, बिना कोड़ी लिए मैं तुम्हारे को इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा हूं, मिल सकता है कोई? तुमको उनको तुम उनको अर्पण करते हो, भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हैं, बोला नाथ की महिमा होती है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख मेरे। वो आकर राजयोग सिखलाते हैं, राजाई देते हैं, शिव बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं, और राजा ही देते हैं, बाप को कहते हैं ये जो पुराना कचरा है वह हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। ये बीमार तन धन मन तुम्हारे ऊपर क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, वो हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं, आप हमको 21 जन्मों के लिए माला माल करते हो। सराफ होता है, होते हैं ना, याद आ गया सराफ, हाँ जी, मट्टा सट्टा करते, याद आया, हाँ, वो राख खरीदते हैं सोनार की और उससे उस राख में से सोना और चांदी निकाल कर उसकी ईंट बनाकर उसे वापस दे देते, कमीशन ले लेते हैं, कमीशन लेते हैं। ये भी कहते हैं कचरा जो हवी है देश सहित वो सब तुम्हारा लेता हूं, तुम्हारा कचरा लेता हूं, जो तुमने सारा 5000 साल तक, 4999 साल तक या 4000 साल तक जितने समय तक भी आपने यूज कर लिया है, अब यूज किया हुआ कचरा क्या करो, जो भी है देश सहित वो सब तुम्हारा लेता हूं, दे दो। जब तुम मरने पर हो, वो भी जब तुम मरने पर हो, यहां तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफेद हैं, जैसे कि तुम मरे पड़े हो, जैसे कि तुम मरे पड़े हो, मरने वाले पर हमेशा सफेद चद्दर डालते हैं, कोई भी दाग ना हो, चद्दर को भी ये देखा जाता है ऐसी चद्दर हो जिस पर कोई दाग ना हो। इस समय इसका मतलब क्या होता है, उनको समझ में नहीं आया, सफेद चद्दर जिसमें दाग ना हो, मत तुम्हारे जीवन में कोई भी अवगुण ना हो, बुराई ना हो।
सफेद तो सिर्फ कपड़े डालते, बाद में तो सब अपने अपने हिसाब से जो भी जाता है, ना ना सफेद ही डालते हैं, कौन डालता है सफेद, सभी जुड़ी डालते हैं, सभी डालते हैं।
मेरे भाई ऐसा है कि नॉर्मली सामान्यता लेडीज पर रेड को रेड स्वागिन है तो उस पर रेड डालते हैं और इधर जो है ना सफेद डालते हैं। अब क्या है कि अब पहले तो जो बातें थी उसका मतलब तो ये था कि सफेद पर कोई दाग ना हो, सफेद पर दाग ना हो मतलब ये आत्मा बेदाग जा रही है, जैसे कोई रिटायर होता है, अब किसके ऊपर तो रिटायरमेंट से पहले कितने दाग लग जाते हैं, जीवन दुखी हो जाता है, और जो बेदाग जाता है उसके लिए फिर सब कहते हैं भी देखो इसने अपने जीवन में बेदाग किया है, कोई दाग इसके जीवन में नहीं लगा, क्योंकि आज के टाइम में तो ये देखा जाता है पकड़ा गया तो दाग नहीं लगा, दाग लग गया, नहीं पकड़ा गया तो दाग नहीं लगा। परंतु जो बिल्कुल बेदाग, जिसने अपने जीवन काल में कोई भी पाप कर्म ना किया हो, गलत कर्म ना किया हो, ऐसा कोई दाग ना लगा हो, ऐसी आत्मा ऐसे शरीर छोड़ करके जाए ना, तो बात तो यहाँ थी, परंतु उन्होंने वो चादर डाल करके सोच रहे कि अब बेदाग चला जाएगा। आप चाहे उसके ऊपर रंगीन चादर डालो, चाहे दाग लगी हुई चादर डालो, उसने को मतलब नहीं है, उस चादर से उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ दुनिया वाले, अब कोई गरीब है तो एक चादर में चला जाता है, अमीर है तो सैकड़ों चादर डाल जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, आप बढ़िया बढ़िया चादर डालते हैं, बस क्या फर्क पड़ता है, वो शमशान में उस पंडित जी को मिल जाते हैं, वो दोबारा मार्केट में आ जाते हैं। हाँ ठीक है, क्या है मुझे बता, हाँ भाई मेरे क्या है, है तो कपड़े ना, सबको माया का काला दाग लग गया है। दाग कौन सा कह रहे हैं ये, बाबा कहते वो दाग लगे वो को नहीं देखना, ये दाग है जो माया के दाग सब आत्माओं पर लगे हुए हैं, वो ना तो शरीर पे लगते हैं दाग, ना वो चद्दर पे लगते हैं दाग, यानी काली माया का काला दाग लग गया है, इसको ही राहु का ग्रहण कहते हैं, इसको माया का ग्रहण दाग कहते हैं, काला दाग कहते हैं, इसको ही राहु का ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगने से काला हो जाता है ना, तो ये माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है, इसमें तत्व आदि सब आ जाते हैं, बाप बैठ सम जाते हैं, ये तुम्हारा राजयोग है, राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है, तुम राजाओं का राजा बनते हो, नारायण नशा रहता है, नर से नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है सतयुग में, होता ही है सतयुग में, तो जरूर मुझे अंत में आना पड़े, ये समय है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते धक्का खाते रहते हैं। भक्तों को रखवाला है भगवान, भक्ति का फल आकर देते हैं। सब भक्त तो हैं, परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता। सबको एक जैसा फल नहीं मिलता। कोई को साक्षात्कार होता है, कोई को पुत्र मिलता है अल्पकाल के लिए। किस्म किस्म की मनोकामनाएं पूरी करता हूं। दुनिया में ये किसी को पता नहीं कि भगवान आया हुआ है राजयोग सिखलाने। समझते हैं वे द्वापर में आया तब राजयोग सिखाया होगा, फिर वहां नर से नारायण कैसे बनेंगे। अभी है, अभी ही बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। यहां तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है, यहां तो तुम्हें सिर्फ क्या रहना है, चुप रहना है। मन मना भव, यही सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र, यही सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र में बहुत आमदनी है, इस मंत्र में बहुत आमदनी है। ये माया को अपने अधीन करने का मंत्र, ये माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। माया जीत जगत जीत, माया जीत जगत जीत। भक्ति मार्ग वालों का है मन जीते जगत जीत। इसके लिए वह हठ योग आदि करते हैं, सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते हैं, वे तो मुक्ति के लिए करते हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे देह सहित सर्व धर्मान परित्यज, सब धर्मों को छोड़कर माम एकम त्याग करो। मैं फलाने का धर्म, फलाने धर्म का हूं, फलाना हूं, ये सब बातें छोड़ दो। आप किसी धर्म, किसी पंथ, किसी मत, किसी मठ को मानते हो, अपने को आत्मा समझ माम एकम। गीता में लिखा सर्व, दुनिया वाली झूठी गीता में लिखा सर्व धर्मान परित्यज, सब धर्मों को क्या करो, छोड़ करके। अब सर्व धर्मान, आप किसी भी धर्म के हो, माम एकम, बस सिर्फ मेरा कहना मानो और किसी का कहना, बस मैं जो मत दे रहा हूं उस पर चलो। ये है मरना, ये है मरना। बाकी अब तक जो अनेक मत पर, मतों पर चलते आए, उन सब की मत छोड़नी पड़े। आज तक जिसका भी कहना सुनते आए हो, मानते आए हो, जिसके कहने पर चलते आए हो, आपको वो सारा कुछ क्या करना है, अब छोड़ दो। तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो गया। समझते हैं इनों की बातें तो नहीं है, इनों की बातें तो नहीं है। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो पहले उनकी नब्ज देखनी है, सब के सामने एक जैसी बात नहीं करनी है, सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी है। मनुष्यों की है अनेक मते, तुम्हारी है एक मत। तुम्हारी क्या है, एक मत, परंतु नंबरवार है, परंतु क्या है, नंबरवार है। जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वे जरूर अच्छा समझाएंगे, वो जरूर अच्छा समझाएंगे। कम धारणा वाले कम समझाएंगे, जिनकी धारणा कम है वो कम समझाएंगे। कोई भी हो, उनको एक ही सिंपल बात बताओ, कोई भी हो उनको एक ही सिंपल बात बताओ, बल गृहस्थ व्यवहार में रहते रहो, गृहस्थ व्यवहार में रहते रहो, परंतु कमल फूल समान, कमल फूल समान। तुमको मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं, कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं और मिसाल भी उनका ही दिया जाता है। बाप का भी, बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत है। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं। ये मिसाल अच्छा है, ये मिसाल अच्छा है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहो, परंतु पवित्र रहो। ये बात हो गई पवित्रता पर, ये बात हो गई पवित्रता पर। सो भी इस अंतिम जीवन के, अंतिम जीवन के लिए पवित्र रहे। मामेकुम याद करो, रचना की पालना भी जरूर करनी है, अपने बच्चों को पालो भी सही, नहीं तो हठ योग हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, हठ योग हो जाएगा। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी तो भीष्म पिता महामिसल हो गया, भीष्म पिता महामिसल हो गया। अच्छा, बाल ब्रह्मचारी वे जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहे पवित्र रहे। बाल ब्रह्मचारी वो है जो बीत गया वो बीत गया, अब आप स्त्री पुरुष इकट्ठे रहो परंतु पवित्र। गंधर्वी विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है परंतु कोई जानते नहीं, परंतु कोई जानते नहीं है। ये तो बाप ही समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियाला बांधो। कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो, कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की, एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहां तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो इसलिए तुम बड़ा ऊंच पद ले सकते हो। मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर ऊंच पद पाते हैं, इसमें हिम्मत है बड़ी। अगर पक्के हो चलते रहो तो, अगर पक्के हो चलते रहो तो पद बहुत ऊंच है। फिर सर्विस पर भी मदार है, जो बहुत सर्विस करेंगे प्रजा बनाएंगे वे पद भी अच्छा पाएंगे। बाबा मम्मा से भी ऊंचा चल, ऊंच चला जाना चाहिए। इतना पुरुषार्थ करो कि हम बाबा मम्मा से भी ऊपर जा सके, चले जाए। परंतु जैसे बाबा कहते हैं वे दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन जाएं, सो ऐसे जोड़ा कोई निकले जो मां बाप से ऊंच जाए। सो है नहीं, जगत अम्बा जगत पिता ही नामी ग्रामी है, इन जैसी सर्विस कर नहीं सकेंगी, ये निमित्त बने हुए हैं, इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मम्मा बाबा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हो ना, वहां तो कोई और नहीं है। सर्विस पर मदार है, प्रजा और वारिस बनाने हैं तो ये अपनी बातें हैं। नई नई दुनिया रचने के लिए जरूर बाप को आना पड़े, बाप को आना पड़े, वही रचयिता है। वे तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा है नहीं, परंतु ऐसा है नहीं। उनका भी कोई दोष नहीं, उनका भी कोई दोष नहीं, तकदीर में हो तो समझे। बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, जो समझते भी हैं कि बात तो बरोबर ठीक है, बात तो बरोबर ठीक है। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा किसका नाम, नाम किसका पड़ा भाई? आत्मा का नाम रूप नहीं है तो तुम आत्मा कहते किसके हो? आत्मा तो उसका नाम हो गया ना, आत्मा बोलो नाम तो यही होता है ना। आत्मा का नाम रूप नहीं है, पहले तुम उसका नाम दे रहे हो, फिर कह रहे हो उसका नाम रूप नहीं है। फिर रूप नहीं है, जिसका रूप नहीं है वो होता ही नहीं, वो है तो उसका कोई ना कोई तो रूप होगा ना। वो नहीं देख सकते तो वो तुम्हारी आंखों की कमजोरी है ना, तो अपनी आंखें तेज करो।
वो कौन सी
आंख है? वही तो तीसरी आंख बाबा आकर देते हैं, बाकी कोई तीसरी आंख तीसरी आंख तो नहीं निकल जाती है, आंखें तो यही रहती हैं। इन आंखों के बिना हम उस आत्मा को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो कहलाती है तीसरी आंख। आत्मा नाम तो है ना, तुम सबको बोलो ये राजयोग परम पिता परम आत्मा संगम पर आकर सिखाते हैं। राजयोग जरूर संगम पर सिखाएंगे, तब तो पतित को पावन बनाएंगे। तो यहाँ की बात ही क्या है, न्यारी है बात। कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो, बाप के पास जाना है, इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात ही नहीं। कहते भी हैं कि हमारी आत्मा को ना दुखाओ, हमारी आत्मा को ना दुखाओ, ये पाप आत्मा है पुण्य आत्मा है। आत्मा के लिए कोई कह ना सके कि इनका कोई रूप नहीं है। जब आप कह रहे हो ये पाप आत्मा है, धर्म आत्मा है, महान आत्मा है, तो है ना। तो विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठा तो उनको साक्षात्कार हुआ, देखा कि लाइट आई जो मेरे में प्रवेश हुई। ऐसे कुछ बात बताते हैं। तुम बोलो हमारा है राजयोग, इसमें देह सहित देह के सभी मित्र संबंधियों आदि को भूलना पड़ता है। हम आत्मा उनके बच्चे हैं, आपस में ब्रदरहुड हैं। अगर सभी फादर हो जाते तो फिर फादर ही फादर को प्रार्थना करते। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, ये है राजाओं का राजा बनने का योग। अभी तो राजाई है नहीं, तो समझाना है। हम शांति में रहकर सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं, अपने को शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, तो नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है ना, नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है ना। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है, आत्मा निर्लेप नहीं है, ये समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, घड़ी घड़ी आर्गंस लेना पड़ता है। आत्मा स्टार है, ब्रिकुटी के बीच रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उसने समझा इनमें इतनी ताकत है, इनमें इतनी ताकत है जो मुझ आत्मा का साक्षात्कार कराया। अब आत्मा तो भ्रिकुटी के बीच में रहती है, साक्षात्कार किया ना किया, चाहे साक्षात्कार किसी ने किया या नहीं किया, फर्क क्या पड़ता है। आत्मा खुद कहती है कि मैं स्टार हूं, मेरे में 84 जन्मों का पार्ट है। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हो जो पता नहीं क्या हो जाए। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो मान ना सके। अभी हम पावन बन रहे हैं, बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है, ये बहुत अच्छा नशा चाहिए, तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार नहीं। देह सहित देह के सब धर्म त्याग अपने को आत्मा अशरीरी समझना है। भल हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं परंतु डिस्कस क्यों करें, डिस्कस क्यों करें, जबकि बाप ने कहा है माम एकम याद करो। और दूसरा फरमान है गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहो, रहो गृहस्थ व्यवहार में परंतु रहो कैसे, कमल फूल समान पवित्र रहो। योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे, भगवानों वाच है, भगवान भी परम आत्मा है, भगवान भी क्या है, परम आत्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे। बहुत पॉइंट्स है, एक समय नहीं निकल सकती, असामी देख युक्ति से उठाना है, बोलो हम भी शास्त्र पढ़ते, हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु बाप का फरमान है कि सभी को भूल माम एकम याद करो। वह है निराकार आत्मा, वह है निराकार आत्मा को तो सब मानेंगे, आत्मा को तो सब मानेंगे, विवेकानंद वाले भी मानेंगे, जो मतलब दूसरे धर्म वाले हैं जो कहते हैं आत्मा, सब मानेंगे। आत्मा तो सभी में है, जरूर उनका बाप होगा ना, जिसको परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। ये सब पॉइंट्स हैं ना, ये सिमरण करने से सदैव पॉइंट्स मिलती रहेंगी, स्टीमर भरता रहेगा, ये भी जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का वक्खर सामग्री भरता है। पॉइंट्स नोट कर रिवाइज करो, ये हैं रत्न, इनको धारण करने और लिखने का शौक चाहिए, अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है, उनका नाम रूप नहीं है, उनका नाम रूप नहीं है, ऐसे तो कह नहीं सकेंगे आत्मा का रूप है, तो आत्मा तो परमात्मा का क्यों नहीं है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला है, कितना बच्चों को समझाया जाता है, तो अब सर्विस करके दिखाओ। बाबा तो सर्विस पर इनाम देते हैं, क्या इनाम देता है भाई, बस वो भी बाद में मिलेगा, पूरा कर दो काम, जितना करोगे उतना इनाम एक साथ दूंगा, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा दे दूं, थोड़ा हिम्मत आ जाए, अच्छा आज 100 रुपए कमा लिए तो अगले दिन और मेहनत करेगा 200 कमाएगा, परंतु यहाँ इकट्ठा देगा, हाँ पहले नहीं देगा। कितना श्रृंगार कराते हैं, कितने श्रृंगार कराता हूं ना, तुम अपने आप को अच्छा पसंद कर सकते हो ना, जो आप साथ के साथ देता है बाबा, कि तुम जितना अच्छा व्यवहार करोगे सब कहेंगे ना कि अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ज्ञान रत्नों का, हम यहाँ के पद्मपति नहीं बनना चाहते, हमको तो चाहिए विश्व की बात सही, अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर स्वयं में धारण करना है, स्वयं में धारण करना, जो ज्ञान रत्न मिले हैं उनको अच्छी तरह मनन चिंतन करो और अपने जीवन में धारण करो। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है, हर वक्त उन्हीं का ही प्रयोग करना है, क्योंकि जितना उनको प्रयोग करेंगे उतना भरते जाएंगे। अपने नारायणी नशे में रहना है, वाहयात बातें किसी से भी नहीं करनी, वाहयात बातें किसी से भी नहीं करनी है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना, और शरीरी बनने का अभ्यास करना है वरदान। दुआ और दवा, दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो, परेशान नहीं हो, कोई बात नहीं, डॉक्टरों का कर्जा देना, शरीर को थोड़ा दर्द होना, होने दो, मैं तो आता। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक, कोई टॉनिक नहीं दुनिया में। खुशी दुखी हो जाते हैं ना तो शरीर और ज्यादा बीमार हो जाता है। अब तो मैं मरा, मरा क्या, एक शरीर छूटे मैं दूसरा ले लूंगा, फटती है फटने दो, शरीर मरता है तो मरने दो। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी, शरीर की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, मन की। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई, मतलब खुशी में रहेंगे तो टॉनिक मिलता रहेगा, और ये जो गोलियां टाफियां नीली पीली लाल सफेद देते हैं, ये जो है ना क्या है, एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज भी दुनिया से अलग है। तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, खुशी से दर्द भी भूल जाएगा, खुशी होगी ना, क्योंकि इंडोर्फिन, जब खुश होते हैं ना हमारे ब्रेन से इंडोर्फिन निकलता है। जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाते हैं, तुरंत पहला काम करते हैं मॉर्फिन का। सामने आ जाए ना कोई भी, जैसे डॉक्टर, हाँ जी, आप क्या करते हैं,
तो सीधा ही कर देते
हैं, नहीं स्टंट तो डालते हैं, परंतु स्टंट डालने से पहले, सब कुछ करने से पहले मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं। ये मॉर्फिन का इंजेक्शन क्या करता है, वो दर्द को महसूस नहीं होने दे, ऐसा पेन किलर है वो, मतलब कितना भी आपको दर्द हो रहा है ना, आपको दर्द नहीं होगा, आप कहेंगे बस मैं ठीक हो गया, वो दर्द वही है, सब कुछ वही है, परंतु जो इंजेक्शन लगाया जाता है, जैसे हम पेन के पैरासीटामोल खा लेते हैं तो थोड़ी देर में शरीर का दर्द नहीं महसूस होता ना, ऐसे वो एक पेन किलर का इंजेक्शन है। और इंडोर्फिन जो है ना मॉर्फिन से भी तेज है, और जो मॉर्फिन का इंजेक्शन है ना उससे भी तेज है। कितना भी आपको दर्द हो रहा होगा शरीर में, परंतु आपको दर्द महसूस नहीं होगा, खुशी में दर्द महसूस नहीं होता, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है इंडोर्फिन की। और वो तब निकलता है हमारे ब्रेन से जब खुश होते हैं, खुश होते हैं, खुशी होती है ना तब वो निकलता है, खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है तो ज्यादा सोचो नहीं, ज्यादा सोचो नहीं, अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है। बहुत ज्यादा सोचते हैं ना उससे टाइम भी वेस्ट हो गया और खुशी भी गायब हो जाती है। स्लोगन है, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी, स्थिति सदा एक रस रहेगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, परमात्मा की सदगति करने की गत मत परमात्मा ही जानता है, परमात्मा की सदगति करने की गत मत परमात्मा ही जानता है और न जाने कोई, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई। अब ये महिमा किसकी यादगार में गाते हैं, किसकी यादगार में गाते हैं, क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं, नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ ये इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, हमको सदा के लिए क्या चाहिए, सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले, वो सुख कैसे मिले जब तक मनुष्य अपने पांच विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए, कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गुह्य है, बहुत गुह्य है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी गत मत तुम ही जानो, तेरी गत मत तुम ही जानो, इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है, वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है, ये शिक्षा देना परमात्मा का काम, ये शिक्षा देना क्या है, परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो ये ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्यों का पहला पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, अपने कर्मों को सुधारना, तब ही मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।